परम पिता शुभ परमात्मा, यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा, माँ सरस्वती जगदम्बा, इनकी पालना में पले, इनके बाजू में बैठे, साथ में भोजन खाया, घूमे फिरे और छोटे से बड़े हो गए और आज यज्ञ का आधार स्तंभ बन गए। ऐसे परम पवित्र, परम तपस्वी, अथक सेवाधारी यज्ञ के प्रति अपना तन मन धन जी जान सब कुछ अर्पित करने वाले आदरणीय रमेश भाई जी हम सभी के समक्ष है। हम बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा कल मुरली सुना कर गए, बहुत थोड़ी बातें बताई, लेकिन मुरली की गहनता हम सभी ब्राह्मण इतना सहजता से नहीं समझ पाते। परम सौभाग्य ये उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो अधिकारी और विश्व महाराजन बनने वाले हैं। तो मुरली को सहजता से समझाने वाले और दूसरे दिन का पहला क्लास इसका अधिकार प्राप्त करने वाले हम सभी के समक्ष भ्राता जी बैठे हैं। ये परम भाग्य है जो ये अधिकार इनको प्राप्त हुआ। भाई जी का परिचय, बंबई से 1953 में संस्था का परिचय प्राप्त हुआ। ईश्वरीय सेवा में निरंतर व्यस्त आदरणीय वरिष्ठ भाई रमेश भाई जी, आप बीकॉम एलएलबी एफसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विविध क्षेत्र में आप सेवाएं दे रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप प्रेसिडेंट हैं, जुरिस्ट विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के आप चेयरपर्सन हैं। आपका अनमोल जीवन इस ईश्वरीय परिवार के इतिहास में दर्पण समान है। तो ऐसे भ्राता जी से सुनते हैं, कल जो बाबा ने मुरली चलाई उसको सहज रूप से हम किस तरह से समझे और धारण करें। आदरणीय भ्राता जी, हम शांति।
और परमात्मा की संतान वो परिचय देते ही नहीं है, समझते हैं कि शायद रमेश भाई का आत्मा नहीं होगा और परमात्मा की संतान नहीं होगा, इसलिए वो परिचय नहीं देते, बाकी सब प्रकार का परिचय देते हैं। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको अपना ही परिचय दे दूं कि मैं एक आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा शिव बाबा का एक संतान हूं। आप जैसे संतान हो ऐसे मैं भी संतान हूं। और मुझे ड्यूटी मिली हुई है कल की मुरली जो है उसके बारे में चिंतन करने की। जैसे गाय होती है ना, हाँ, गाय घास खा लेती है, पीछे शांति से बैठ करके उगारती रहती है। राधी जानकी कहती है विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग विचार सागर मंथन कल की मुरली के बारे में करें। पहली बात तो बाबा कैसे आए, कब आए, हाँ, वो सारा ही टाइम की बात जो है, क्योंकि कल बाबा ने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। डॉक्टरों ने दादी गुलजार जी के बारे में कहा था कि वो 2 घंटा बैठ सकती है, उनसे ज्यादा नहीं बैठाना चाहिए, ताकि मतलब जो इंजरी जो हुई है वो हीलिंग में बाधाएं हो सकती है। तो बराबर 7 बजे वहां से निकले और यहाँ आए 7:10 को, यहाँ पर स्टेज पर बैठे, आगे पीछे का सारा कारोबार ठीक करके दिया, हा? और फिर क्या हो गया, 7:15 को गीत बजा योग का। और कल बाबा ने भी देखा, कई बार तो बाबा गुलजार दादी को 6 मिनट के बाद वतन में बुला लेते हैं। कल बाबा को जल्दी जल्दी सब कुछ करना था, इसलिए बाबा ने 2 मिनट में ही दादी गुलजार की बुद्धि की रस्सी खींच ली और बाबा 7:17 को बाबा के पास गुलजार दादी चले गए। फिर बाबा हम लोग योग करते रहे, 7:26 को गुलजार दादी के तन में अगत्य बाप दादा की पधरावनी हुई और बाबा ने दृष्टि दिया 8 मिनट, और 7:34 को बाबा ने मुरली शुरू किया। मुरली शुरू किया, पीछे तो आप जानते हैं, वह मैं टाइम नोट करता हूँ कि बाबा ने हम बच्चों के बीच में से विदाई कब लिया। हाँ, तो वो भी मैंने नोट किया है 8:45 को, 8:45 8:45 को बाबा ने विदाई लिया हम बच्चों के। और फिर गुजरा दादी को जो है 2 घंटे में पहुंचना था, हाँ, तो 9 बजे से पहले बाबा ने उनको अपने जहाँ पे रहते हैं शक्ति कुंज में, शक्ति भवन में, वहाँ पर भेज दिया। इस प्रकार से बाबा ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रवचन करने में क्या क्या करते हैं, हम लोग यहाँ स्टूडियो में अनुभव यही करते हैं कि एंकर जो बहन होती है या भाई होता है उसको बहुत कम बोलना होता है, 1:10 का रेशियो होता है। पर तो क्या होता है, कई एंकर के रूप में ऐसे आते हैं और 10 टाइम्स वो ही बोलते हैं, और जिसका इंटरव्यू होता है उसको 1 टाइम ही बोलने को देते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको प्रवचन करने की हैबिट हो गई है। तो इस प्रकार से समय देख करके किस प्रकार से कारोबार करना चाहिए वो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। और बाबा ने कल भी बताने कहा, बाबा ने क्या किया, और दुनिया और समय पर तो चारों ओर के बच्चों आदि के द्वारा शुरू करते हैं। कल बाबा ने कहा, आज हम बच्चों के याद और प्यार ने बाप दादाओं को इस साकारी दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया। ये अपनी आकर्षण का भी ताकत है, अपनी आकर्षण का भी एक बार ताकत है। एक बार बॉम्बे में क्या हुआ, जब वाटरलू मिशन में सेंटर था तो हम सबके वहां पर भट्टी थी। हाँ, तो मेरे साहब भट्टी में दादी पुष्प शांता बाबा के पास गई थी, तो बाबा के पास गई तो सबने कहा कि बाबा को आमंत्रण दो, तो हम सबने गीत गाया, प्रीतम आन मिलो वाला गीत गाया। तो बाबा आ गए तब हमको बहुत, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि तानसेन जो है, तानसेन गाता है हाँ तो दीपक जल जाता है, और ताना रीरी जो है उसने भी गीत गाया, मल्हार राग गाया, बारिश आ गई। तो हम ऐसा गीत गाते हैं कि बाबा आ जाते हैं। तो बताइए, हम अच्छे संगीतकार हैं, गाने वाले हैं, या तानसेन और ताना रीरी ऐसे जो भी है, कौन है? इसलिए अपने को भी अपने के बारे में नाज होना चाहिए कि हमारे में भी ताकत है। तो बाबा ने कल बताया कि आप बच्चों के आकर्षण से हम बाबा को बुला लिया, और बाप दादा भी बच्चों को साकारी दुनिया में साकार रूप में देख रहे हैं। हमारी 2 दिन पहले हमारी तीनों भाइयों की मीटिंग हुई थी, तो मैंने मीटिंग में कहा कि मैं बाबा को एक रिक्वेस्ट करूं। क्या, निर्वय भाई ने पूछा कि क्या रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा, बाबा आप 2 टर्न नहीं आए, 18 तारीख को और फिर दूसरी लास्ट तारीख को, 15 तारीख को नहीं आए, हाँ तो इसलिए 2 बार नहीं आए तो आपको 2 बार एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो निर्वय भाई ने कहा, नहीं, बाबा ने तो संदेश दिया था कि मैं तो आऊंगा, मैं अनुभव भी कराऊंगा, जिन्हों को अव्यक्त स्थिति का और अव्यक्त मिलन बनाने का अनुभव हो उसको मैं, मेरी वहां पर अव्यक्त अनुभूति का मैं अनुभव करा सकता हूँ। तो निर्वय भाई ने बताया कि वो उसी टाइम पर वो वहां पर लोटस में अहमदाबाद में थे, और जब गुलजार दादी के सामने बैठे हुए थे तो बहुत अच्छा उनको अनुभव हुआ कि जैसे बाबा उनको अनुभव करा रहे हैं अव्यक्त स्थिति का, जैसे बाबा अपना तो अनुभव करा रहे हैं, और तो हम समझ नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते। उसके कारण क्या होता है कि हमें बाबा की साकार दुनिया में साकार रूप में अनुभव करने की इच्छा होती रहती है। और इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हाँ, बाबा को आगे चलकर के ड्रामा की बात करनी है, इसलिए बाबा ने क्या किया, बच्चों के प्रति बच्चे कौन है, हम बच्चे कौन है, उसके एक नई डेफिनेशन बाबा ने दिया। हम बच्चे हैं कल्प कल्प के पात्र बच्चों को, हर कल्प के हम यही बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम लायक बच्चे हैं, हम भाग्यशाली बच्चे हैं। और इसलिए बाबा ने क्या कहा, कल्प कल्प के पात्र बच्चों को, लायक बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं, 2 दिन पहले भी चर्चा हुई, ये ड्रामा है, ये कल्प की बात है, ये सब क्यों है, हमारा पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। हमने कहा, पुरुषार्थ में श्रेष्ठ भाग्य यही मिलता है, इनसे और क्या भाग्य आपको मिल सकता है, और क्या आपको भाग्य चाहिए श्रेष्ठ। तो इसलिए श्रेष्ठ भाग्य दिलाने वाला बाबा है ही, भाग्य विधाता बाप कहता है कि आप कल्प कल्प के पात्र बच्चे हैं, फिर और बातों की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल्प कल्प के पात्र बच्चों के लिए कहा, और फिर क्या कहा, बाबा ने कहा, बच्चों के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन बना रहे हैं। मिलन मिलाने का अनेक तरीका होता है, पर तो बाबा ने क्या बताया? हाँ, बाबा के साथ मिलन करने के लिए बाबा ने देखो बताया है कि भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन बना रहा है। हम बच्चों के भाग्य और हाँ हम बच्चों का भविष्य में होने वाला, प्राप्त होने वाला जो भी है श्रेष्ठ पद, हाँ उनको देख करके, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है, हम बच्चे तो त्रिकालदर्शी नहीं है। और उसके कारण क्या है? हाँ, बाबा ने कहा कि दिल ही दिल में हर बच्चे का भाग्य को देख बाप हर्षित हो रहा है। और फिर क्या देखा? देखो बाबा का हम लोगों के चेहरों के ऊपर, हमारे जीवन के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में, हम एक्सटर्नल, हम लोग जो है एक्सटर्नल सौंदर्य जो है उसको देखते हैं, और बाबा क्या देखता है? हमारे ही जीवन के बारे में, हमारे ही मुख के बारे में बाबा क्या देखता रहता है? बाबा ने कहा देखो बहुत सुंदर पांच बातें कही है, वो पांच बातें देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम भी जब औरों को मिले तब स्थूल बातों में नहीं जाए, कैसे हो, क्या है, इस प्रकार से बातें करते रहते, लौकिक दुनिया के रूप में मिलन बनाने की बातें करते हैं। बाबा ने क्या कल बताया? अव्यक्त मिलन कैसे हो सकता है? उसका बाबा ने बताया, डेमोन्स्ट्रेशन किया कि हर बच्चे के चेहरे में क्या दिखा? पहले चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चे के चेहरे पर जो चमकता हुआ भाग्य वो दिखाई दे रहा है। तो हमारे चेहरे से ही हमारा भाग्य दिखाई पड़ सकता है, ये बहुत गुह्य बात है। उसको समझने के लिए काफी अनुभव की जरूरत है कि चेहरे से भाग्य कैसे चमकता हुआ है, वो कैसे औरों को दिखाई पड़ सकता है। सत्युग में भी होगा, आप जानते हैं सत्युग में डबल क्राउन ड्यूटी बाबा कहते हैं, डबल क्राउन ड्यूटी सॉवरेनिटी होती है, दो क्राउन, एक तो राजा के रूप का क्राउन और दूसरे उसके पीछे में जो है पवित्रता का क्राउन जो है, तेजस्वी जीवन जो है, तेजस्वी मुखारविंद है, तो वो दिखानी पड़ती है। तो ये बाबा ने कहा कि चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी बात, मस्तक में लाइट की प्राप्ति की चमक दे रही है, दिखाई रही है, जो ज्ञान जो है उसके जो चमक जो है, जो लाइट के रूप में जो चमक जो है उसको देख रहे हैं। फिर हाथों में, हमारे हाथों में क्या होना चाहिए? कई लोग जो है हाथ में देख करके रिक्शाओं के द्वारा भविष्य देखने का प्रयत्न करते हैं। बाबा ने क्या देखा कि हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है। हमारे पास कितना ज्ञान है वो ज्ञान का बाबा भंडार देख रहे हैं। और फिर चौथी बात, दिल के अंदर दिलाराम बाप जो है वो दिखाई रहा है। जैसे आपको मालूम है ना, हनुमान जी ने क्या किया आपको मालूम है? भक्ति मार्ग जिन्होंने भक्ति किया होगा उनको मालूम होगा कि हनुमान जी ने अपना दिल खोल के दिखाया तो उसके अंदर राम सीता का चित्र था। वो बताते हैं, वो एक सिंबॉलिक है, बाबा भी यही कहते हैं सिंबॉलिक है कि आप बच्चों के दिल में दिलाराम कौन है, सबको मालूम है ना दिलाराम कौन है? दिलाराम बाप है। तो इसलिए हमारे दिल से दिलाराम बाप दिखाई पड़े। और पांचवी बात कि हर कदम में पदम की पदम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भाग्य का भाग्य देख हरे का चमक, तेरा चमक से चमक रहा था। और फिर क्या हो गया बाबा ने? और इन सब पांचों से बातें के आधार पर सम टोटल ऑफ पांच जो है बातें, एक तो भाग्य, लाइट, ज्ञान, दिलाराम और पदमों की कमाई, ये पांच का सम टोटल बाबा ने बताया कि हर बच्चे संतुष्ट स्वरूप दिखाई दे रहा है। जो संतुष्ट स्वरूप होगा उसके अंदर ये बातें होगी, और जिसके अंदर ये पांच ही बातें होगी वो सदा ही संतुष्ट रहेगा। हमारे लिए सोचने का है कि हम क्या सदा संतुष्ट रहते हैं। और उसके आधार पर बाबा ने क्या कहा कि दुनिया वाले आपको देख करके आपके लिए पूछेंगे कि आपको क्या मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है। तो बाबा ने जो गीत साकार बाबा ने, आप जानते हैं साकार बाबा गीत भी लिखते थे, और साकार बाबा गीत लिखते थे और हमारी मातेश्वरी जो है वो गीत गाती भी थी। तो उसमें जो था, जो पालना था सो पा लिया, वो जो गीत जो है और बाबा ने ओरिजिनली हिंदी में लिखा हुआ था, उसका हम लोगों ने हिंदीकरण कर दिया। और ये गीत जो है, जो पाना था उसको पा लिया, वो हम लोगों ने जो यहाँ पर ऊपर में ओम शांति भवन में और शिवरात्रि का ड्रामा किया हुआ था, उस ड्रामा के अंदर अंत का गीत जो है हम लोगों ने इसके ऊपर ही गीत बनाया, पाना था सो पा लिया, अब बाकी करना कुछ नहीं। कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ बहुत सुंदर वो गीत है, कभी आपको किसी को सुनने की इच्छा हो, ये पाना था क्या पाना था सो पा लिया, वो शिवरात्रि ड्रामा यहाँ पर मिलता है इसकी सीडी, उसमें से आप लिख ले लीजिए, और उसमें जो गीते जो है बहुत सुंदर गीत बने हुए हैं, तो उसके अंदर ये पाना था सो पा लिया, मतलब बाबा का जो सिंधी गीत जो है वो गीत को हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट करके उसके ऊपर डांस ड्रामा बनाया हुआ था। तो ये पाना था सो पा लिया, और इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बाप दादा ऐसी संतुष्ट मणियों का को देख गीत गाते हैं कि वाह मेरे संतुष्ट बच्चे वाह। देखिए परमात्मा हम बच्चों को महिमा करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि वाह मेरे संतुष्ट बच्चे वाह, ये भी ये बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा हम बच्चों की महिमा करे, और परमात्मा हमको वाह वाह के द्वारा हमारी जीवन के हर पहलू के अंदर मदद करे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा, बाबा ने फिर बता दिया कि मैं तो आप बच्चों का उलहना पूरा करने के लिए आया हुआ हूँ, और अभी मिलने से उलहना पूरा हुआ, इस प्रकार से बाबा ने कहा है। जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा ऐसे भविष्य में मिलते रहेंगे, बाबा ने ड्रामा को आगे रखा, ड्रामा निमित्त बनकर के जैसा हमको मिलन मनाने के लिए आगे का सहयोग देगा, समय देगा, उस प्रकार से करेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है, ये बहुत गुह्य बात है। ड्रामा की बात जो है कई लोग नहीं समझते हैं, कई लोग कहते हैं ये कैसा हो गया, ड्रामा कैसे हो गया, ड्रामा कैसे हो गया। ड्रामा के द्वारा कईयों के नेगेटिव विचार चलते हैं, कईयों के पॉजिटिव विचार चलते हैं। नेगेटिव विचार वाले सोचते हैं कि इसके द्वारा पुरुषार्थ का मार्जिन क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और पॉजिटिव विचार वाले कहते हैं कि जो कल पर पहले किया है और कल की बात है वही आज करनी है, इसलिए कोई हमको मेहनत नहीं है, हम मोहब्बत से काम करते हैं। तो मेहनत के बदले में मोहब्बत से काम करने के लिए भी ड्रामा काम में आ सकता है, ये हमारा एटीट्यूड के ऊपर है। हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, जैसे आप जानते हैं ये पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास आधा भरा हुआ होगा, हाँ तो कहीं की एटीट्यूड ऐसी होगी, कहेंगे अरे नेगेटिव एटीट्यूड वाले क्या कहेंगे, तो पानी का ग्लास तो आधा खाली है, और जिसकी पॉजिटिव एटीट्यूड होगी कहेंगे अरे आधा ग्लास तो भरा हुआ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव ग्लास तो वही है, ग्लास तो वही है, परंतु क्या है हमें अपनी एटीट्यूड को बदली करना है, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड करना है। आप जानते होंगे अमेरिका में डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के प्रेसिडेंट थे तब अमेरिका गए हुए थे, तो अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख जॉन कैनेडी जो है उनका सत्कार समारंभ रखा था व्हाइट हाउस में, तो व्हाइट हाउस में सत्कार समारंभ रखा हुआ था, तो इन्होंने बगीचे के अंदर वो सत्कार समारंभ रखा था, और जैसे सत्कार समारंभ शुरू होता था इतने में जोर से बारिश आ गई, जैसे जोर से जब बारिश आ गई तो सभी मूंझ गए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। जॉन कैनेडी भी मूंझ गया कि क्या करना चाहिए, मेहमान इतना, भारत का राष्ट्रपति आया हुआ है और बारिश आ गई, हमारा सब जो भी प्लानिंग था वो फेल हो गया, वो भी मूंझ गया, उसके मन में उसके ऊपर भी उदासी आ गई, और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वो शांत चित्त होकर के बैठे रहे, देखते रहे सबको, सबकी प्रवृत्ति देखते रहे। तो जॉन कैनेडी ने उनको पूछा, और उसने बाद उसने अपने भाषण में भी बोला और उसके अपने लाइफ हिस्ट्री में भी उसने कहा हुआ है कि मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बात सिखाई। डॉक्टर राधाकृष्णन को उसने पूछा कि इतना घमसान हुआ, बारिश आई, सब कुछ हुआ, हम सब उलझन में पड़ गए और आप शांति से बैठे रहे, इसका कारण क्या है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने बहुत सुंदर बात कही कि वी कैनॉट चेंज द इवेंट्स, जो होने वाला है वो तो होता ही रहेगा, बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इवेंट, हमारा दृष्टि बिंदु जो है उसके वो हमारे हाथ में है, हमारा दृष्टि बिंदु हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसी नेगेटिव दृष्टिकोण से देखेंगे, अरे बारिश आ गई क्या हो गया क्या हो गया, अरे भगवान क्या हो गया, इस प्रकार से सारी दुनिया को उलझना देने के लिए और खुद भी उलझन में भर देंगे औरों को भी उलझन में रखेंगे। तो इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मैंने मेरी एटीट्यूड बदली कर दिया कि वो तो ठीक है, कुदरत का काम है, कुदरत का करिश्मा है, बारिश भी होना ही चाहिए, तो इसके लिए क्या है। मैं खुशी खुशी से बारिश का और जो भी कारोबार होता था उसको देख रहा। हाँ, तो उसी बारिश के कारण औरों को उलझन हो गई थी, और डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि मुझे तो खुशी हो रही थी कि मैं खुशी खुशी से ये सारी बातें देख रहा था। तो ये हमारे हाथों में कि हम किस तरह दृष्टिकोण से दुनिया की बातों को देखते हैं। हम नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, दुखी बन करके देखते हैं, या सुखी बन करके देखते हैं, बात वही है, परंतु दृष्टि बिंदु हमारे हाथों में। हम कैसे आने वाली चीज या आई हुई चीज को फेस करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबा ने जो कल जो बताया कि क्या करो, अपना दृष्टि बिंदु बदली करो, ये बहुत गुह्य बात है। उसका पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि बिंदु बदले, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बाबा के बच्चे सदा ही उमंग और उत्साह में रहेंगे। कहा है ना, याद है ना सबको, ज्ञान तो सबको है, सदा हम बच्चों को उमंग उत्साह में रहना चाहिए। वो ज्ञान तो है, पर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है ना उलझन में आ जाते हैं, ज्ञान ज्ञान के जगह पर रहते हैं। बाबा ने भी कहा हुआ है कि बच्चे जो है समय पर, हम सब वो कर्ण है, महाभारत में पांच पांडवों का एक बड़ा भाई था कर्ण, उसको एक श्राप मिला हुआ था कि समय पर तुम्हारी ये विद्या जो है ना, जो तुमको परशुराम जी से मिली थी, वो तुम भूल जाएगा। हम भी ऐसा ही करते हैं, समय पर जो है, समय पर जब ज्ञान चलाने का या उपयोग में लाने का या उसको व्यवहार में लाने की बात है, उस समय पर ही ज्ञान भूल जाता है। बाबा ने भी कहा, मुरली में कहा था कि जिस घड़ी ब्रेक लगानी चाहिए उस घड़ी ब्रेक नहीं लगती है, बाद में ब्रेक लगती है, उसके पहले क्या होता है, एक्सीडेंट हो ही जाता है, और एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद ब्रेक लगे तो उसका फायदा क्या है। अब स्टेशन पर ट्रेन आती है और चली जाती है, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे तो उसका फायदा क्या है। तो इस प्रकार से कई जगह पर कई बार ऐसा होता है, और इसलिए साकार बाबा के मुरलियों में एक प्रश्न बहुत सुंदर था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज विल नेवर रिपीट। जब आपके सामने आती है तो यू मस्ट कैच द अपॉर्चुनिटी, और उसको स्वीकार कर करके उसके द्वारा खुद को गोल्डन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज माना अपने को गोल्डन एजेड बनाने का प्रयत्न करने का साधन है, और उस प्रकार से इस साधन का उपयोग हम करें तो बहुत ही सुंदर प्राप्ति हो सकती है। तो ये हमारे हाथों में कि जैसे कोई भी साधन हो, इन साधन का उपयोग कैसे करें, उसके द्वारा साधना कैसे करें, कैसे हम आगे बढ़े और कैसे औरों को भी आगे बढ़ाएं, ये हमारे हाथों में है। जानकी दादी जी बहुत अच्छी एक बात कहती थी कि कह रही है, उन्होंने कई बार पहले क्लास में बताया था कि हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है छोटी बात को बड़ी करना या बड़ी बात को छोटी करना। हम लोग इसमें एक्सपर्ट है, छोटी बात को बहुत बड़ी करते हैं, इतना विस्तार में लेके जाते हैं जैसे कि इसके द्वारा महाभारत का युद्ध हो गया होगा, इतनी बड़ी उसको बात को कर देते हैं। छोटी बात, छोटी से किसने गलती किया और उसको हम इतना डांटते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, इतना क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो छोटी बात को बड़ी करना में हम सब एक्सपर्ट है, पर बड़ी बात को छोटी कर गई तो होता ही रहता है, उसमें क्या हो गया। हर एक माता यहाँ बैठी हुई है, उनको मालूम है बच्चा तूफान करता है तो कहता है वो तो तूफान करेगा ना, बच्चा नहीं करेगा तो कौन तूफान करेगा। इस प्रकार से हम बच्चों के तूफान को भी, बड़ी जैसी बात होती है उसको भी छोटी कर करके हम बच्चों को चलाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को चलाना सीखे, हम चिल्लाना सीखे हुए हैं। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, चलाना सीखना है या चिल्लाना सीखना है, उलहना देना सीखना है, आवाज करना सीखना है, चिल्लाना सीख गए हैं। और दूसरा बाबा ने कहा किनारा करना, हम सब किनारा करने में एक्सपर्ट है, छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो इस बात को, परंतु उस बात के आधार पर उसमें परिवर्तन कर करके उसको श्रेष्ठ बनाने की जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तक मिली हुई है, उसको श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये भी अच्छी बात है कि चलाना सीखो, चलाने का बहुत बड़ी बात है। कोई भी कैसे भी बहन भाई आवे, उन सबको चलाने का सीखना चाहिए। हमारी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, हमारी जो आदरणीय दादियां हैं, उनके पास ये बहुत अच्छी कला है, सबको चला सकती है, चिल्ला नहीं सकती है, उसको क्रोध नहीं कर सकती, सबको प्रेम प्यार से चलाने का हाँ, ये भी एक तरीका है, एक ये विधि है, और इस विधि को हम सबको सीखना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा। हाँ, हम इस छोटी छोटी बातों में जो उलझन में आ जाते हैं, क्रोध करते हैं आदि आदि जो भी करते हैं, उनसे हम मुक्त हो गए। तो इसलिए छोटी बात को बड़ी करना तो आसान है, बड़ी बात को छोटी कर करके चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और इसलिए हम बाबा ने भी एक मुरली में कहा हुआ है कि भूतकाल को बिंदी लगाओ। हमारे यहाँ गीत भी है, दिन बिंदु जो है उसमें जो भी बिंदु लगाने की बाबा ने बात सिखाई है, भूतकाल को बिंदी लगाना। परंतु हम क्या करते हैं, भूतकाल को भूलते ही नहीं है, भूतकाल को भूलते ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि वो भूतकाल भूत बन करके हमारे जीवन के अंदर आकर के हमको परेशान करता है। जैसे भूत होते हैं वो परेशान करता है, इस प्रकार से ये भूतकाल हमारा ही भूतकाल, औरों का भी भूतकाल जो भी होगा वो आकर के हमको परेशान करते हैं। और इसलिए क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं तो हम अपनी शान से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अभी भी पिछले हफ्ते में मुरली थी उसमें था, अपनी शान में रहो, अपनी शान में रहो तो आप परेशान नहीं होंगे। तो अपनी शान को समझ करके उस शान के अंदर स्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए फिर बाबा ने कल बताया जिन्होंने सभी बच्चों ने रथ की बहुत अच्छी सेवा किया, और जहाँ भी जहाँ चाहे कहाँ भी रथ को रहना पड़ा। आप जानते हैं दादी को दिल्ली के अंदर ये बीमारी शुरू हुई थी, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, तो इसके कारण दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से फिर आबू। तो इस प्रकार से जहाँ भी गए, जहाँ भी रहना हुआ, वहाँ जहाँ भी जिन्होंने सेवा में मदद किया, बाबा ने उनको मुबारक भी दिया और सबको ऊपर बुलाया। जैसे आप जानते हैं सरला बहन को बुलाया, और भी निर्वय भाई आदि को भी बुलाया, बाद में हम सबको भी बुला करके बाबा ने सबको बताया। भी जानकी दादी को कहा सब ठीक ही होना है। फिर बाबा ने एक नई बात कही, पहले भी दो बार कहा हुआ है, कल फिर से हम तीन भाइयों को आगे खड़ा करके बताया। ब्रिजमोहन भाई ने तो अपना गुलदस्ता दे दिया, मैं और निर्वय भाई अपना गुलदस्ता दे रहे थे, उसके पहले ही बाबा ने हम तीनों भाइयों को कहा, बहुत सुंदर बात कही हुई है। तो किसी ने हमको कहा कि आप तीनों भाइयों को क्यों बाबा कहता रहता है, आप लोगों में क्या है, एकता नहीं है, क्या है बताओ, क्यों बाबा आपको कहते हैं। तो आज भी मुझे एक भाई ने कहा कि ये क्यों बाबा आपको कहते रहते हैं। मैंने कहा बाबा का एक और तरीका सीख लीजिए। हमारे गुजराती में कहते हैं कहना होता है बहू को, कईयों को मालूम हिंदी में भी ये पहाका होगा, कहना होता है बहू को पर नाम लिया जाता है बेटी का, मालूम है। हाँ जी, जिन कईयों ने ये पहाका सुना होगा कि कहना होता है बहू को परंतु नाम लिया जाता है बेटी का। तो इस प्रकार से बाबा हम तीन भाइयों को आगे रख करके सारे दैवी परिवार को कहना चाहते हैं। हाँ, दैवी परिवार में क्या होना चाहिए। हम तो तीन है और तीन की एक एकता देखा बाबा ने प्रतिज्ञा, क्योंकि तीन भाई थे इसलिए। हाँ, सेंटरों के ऊपर क्या क्या होता है, सेंटरों के ऊपर सब मिलजुल कर करके प्रेम प्यार से रहे तो क्या होगा, एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और बाबा ने तो मुरली में कहा हुआ है कि एकता अर्थात एक का, हम एक के अंत में रहे इस प्रकार से एकांत जो है और उसके आधार पर हमारी यूनिटी है। और बाबा ने ये भी कहा है जहाँ यूनिटी है वहाँ बाप भी है। आप सबको मालूम नहीं होगा जब साकार बाबा थे तो बॉम्बे के अंदर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने सात की एक कमेटी बनाई। बाबा ने सात दादियों की और एक दो भाई थे उन्हों की कमेटी बनाई और साकार बाबा ने पावर डेलीगेट किया कि आप सात जो भी मेंबर्स जो बने हुए कमेटी के एक मत होकर के जो भी डायरेक्शन देंगे वो बाबा अपनी डायरेक्शन समझ करके उस डायरेक्शन को कार्यान्वित करेगा। कंडीशन क्या थी, सात ही जो है सात एक मत होकर के। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में क्या होता है मालूम है, दुनिया में क्या होता है, छह पंडितों को इकट्ठा रखो तो छह पंडित एक मत होकर के नहीं बात करेंगे, छह पंडित सात सुझाव देंगे, एक सुझाव नहीं देंगे, उसका नाम है पंडित। पंडित किसको कहते हैं, हाँ एक नहीं, एक मत नहीं हो सकते, कभी भी एक मत नहीं हो सकते। सब कहेंगे मेरा ये मत है, मेरा ये मत है, मेरा ये मत है, उस प्रकार से करते रहते। इसलिए क्या होता है, सिक्स स्कॉलर्स जो है मीट टूगेदर एंड गिव सेवन डिसीजन, सेवन सजेशन, उसको पंडित कहते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे कौन है, जो छह या हम सात थे, सात मिलकर के एक सुझाव दे, वो बाबा के बच्चे। आप ही बताओ कौन अच्छे, छह पंडित मिलकर के सात सुझाव दे वो अच्छा है, या सात बहन भाई मिलकर के एक सुझाव दे वो अच्छा है? तो क्या हो जाएगा, एक सुझाव होगा, बाबा ने कहा कि मैं उसको एडॉप्ट कर दूंगा, उसको मैं आप सबको कहूंगा उसको श्रीमत समझ करके चलना है। तो ये बाबा शुरू से ही एक मत यूनिटी की बात करते हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा सिखाने के लिए हम तीनों भाइयों के सामने भी हम बैठ कर बताया कि आप सबको भी इस प्रकार से करना चाहिए। बहुत सुंदर बाबा ने बात हम भाइयों को कही है कि अभी बाप दादा आप तीन भाइयों के बारे में क्या कहते हैं कि कमाल देखना चाहते हैं। कौन सी कमाल देखना चाहते हैं? कि परिवार की आप तीनों में बहुत उम्मीद है। हम तीनों की बात नहीं है, हर एक के, हर सेंटर के अंदर, हर सेंटर का जो परिवार जो है उसके अंदर भी हर एक की, वहाँ के टीचर बहने हैं, वहाँ के मुख्य भाई बहने जो है उनके अंदर बहुत उम्मीद है। बाप दादा भी समझते हैं कि एक विचार कर अलग विचार होता है, एक विचार के ऊपर अलग अलग विचार तो होता ही है, लेकिन विचारों को मिलाना, विचारों को मिलाना वो हमारे हाथों में है। विचारों को मिलाने का कार्य करें, बाबा मुरली में भी कहते हैं कि ये अमेरिका और रशिया, अमेरिका और रशिया एक हो जाए। आपको मालूम होगा जो पुराने भाई बहन बैठे हुए साकार मुरली में बात आती थी कि पुराने भाई बहनों के लिए बाबा कहते थे कि रशिया और अमेरिका एक हो जाए तो सारी दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। जो पुराने भाई बहन बैठे हुए उनको मालूम होगा कि रशिया और अमेरिका एक हो जाए तो सारी दुनिया पर राज कर सकते। उसके प्रति में क्या हो गया, वो आपस में लड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, और आखिर में विनाश के लिए भी वही निमित्त बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, एक हो जाओ, एक हो जाओ। तो इसलिए एक मत होना, विचार तो भिन्न बनने होते हैं लेकिन विचारों को मिलाना वो भी बड़ी बात है। मनमोहन सिंह ने भी कहा ना कि यूपीए के अंदर क्या होता है, भिन्न भिन्न पार्टियां इकट्ठी हो गई है, उसके बीच में काम करके सबको एक मत होकर के चलाना बहुत कठिन बात है। और इसलिए क्या कहा उसने कि मैं इसलिए मौन व्रत धारण करता हूँ, क्या करूँ, सब मानते ही नहीं है, हर एक अपनी मत को ही समझ जाते हैं। हमारे ज्ञान के अंदर भी यही होता है, कई बहन भाई ऐसे ही समझते हैं कि जो खुद मानते हैं ना वही श्रीमत है, और इसके कारण उस श्रीमत के आधार पर कारोबार करते हैं। क्या क्या करते हैं आपको क्या मालूम, हमारे एक भाई है वो क्या करते हैं, हम बाबा के नाम पर ईमेल में ईमेल भेज देता है कि ये बच्चों को ये करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को ये करना है, और खुद वो भाई खुद लिखता है बाबा के नाम पर। ऐसे अपने ज्ञान में भी, दैवी परिवार में भी ऐसे भाई बहन है जो बाबा के नाम पर अपनी मन मत को दुनिया के सामने प्रसिद्ध करते हैं। एक है श्रीमत और दूसरी है मनमत। तो ये मनमत को श्रीमत समझना और मनमत को श्रीमत समझ करके श्रीमत के आधार पर खुद को चलाना और बाकी सबको चलाना, इनसे बड़ी कोई गलती या इसके बड़ा कोई पाप इस दुनिया में नहीं है। मनमत और श्रीमत के बीच में जो फर्क है उस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए बाबा ने कहा विचार भिन्न भिन्न होता है लेकिन मिलाना भी होता है। तो अभी तीनों यही कमाल दिखाना, तीनों यही कमाल दिखाना कि तीन नहीं लेकिन तीनों एक है, बाकी तो सब अच्छा है, निमित्त होके चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट होता है, आपको मालूम नहीं है यज्ञ के अंदर बाबा अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट दिन प्रतिदिन समय के साथ साथ करते रहते हैं। मैं आपको एक बाबा का ये जो मैनेजमेंट का कारोबार जो है ना उसका ये एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में ब्रह्मा बाबा बाबा का रथ भी थे, बाबा उनके तल में भी आते थे और सब कारोबार बाबा के श्रीमत के आधार पर चलता था। मतलब 100% सब कारोबार के अंदर ब्रह्मा बाबा को आगे रख करके हम बच्चे भी चलते थे और ब्रह्मा बाबा के जो मत मिली उसके आधार पर चलते थे। फिर क्या हुआ, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा ने जो मैनेजमेंट जो है उसकी ड्यूटियां जो है ड्यूटीज में परिवर्तन किया। कैसे परिवर्तन किया? जो ज्ञान का पोर्शन जो है और एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है वो दोनों अलग कर दिया। ज्ञान के पोर्शन के लिए बाबा ने गुलजार दादी के रथ को अपना रथ बना करके उसके द्वारा ज्ञान देने का कारोबार किया। जो पहले ब्रह्मा बाबा के तन को अपना रथ बना करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान देने का प्रयत्न किया था, अब सेकंड स्टेज में 69 से क्या हुआ, गुलजार दादी के रथ को बाबा ने अपना रथ ज्ञान देने का बनाया और कुमार का दादी है दीदी मनमोहिनी है उनको कारोबार के लिए निमित्त बनाया। मैंने मुझे खुद याद है अपना कि जब बाबा अव्यक्त हो गए और 21 जनवरी 69 के दिन बाबा मिलने के लिए आए थे, मुरली चलाई, उसके बाद जब मैं बाबा के सामने गया तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये जो पोखरान हाउस है ज्ञान अपने नकी लेक के पास जहां अपने बाबा का म्यूजियम बना हुआ है, वो म्यूजियम का मकान का मैं सौदा अहमदाबाद में करके आया था, तो मैंने बाबा को पूछा कि ये मकान अभी लेना है या नहीं लेना है, तो बाबा ने कहा लेना है, तो हमने कहा ठीक है बाबा हम ले लेंगे, तो बाबा ने कहा नहीं, अब बाबा का मैनेजमेंट बदली हुआ है, पहले तो एक के अंदर सब कुछ था, ब्रह्मा बाबा एक के अंदर सब कुछ था और उनकी श्रीमत पर सब चलते थे, अब आप बच्चों को मैनेजमेंट में चेंज कर रहे हैं, आप सबको मीटिंग करके मीटिंग में सबकी राय से कारोबार करना है और हो सके ऐसे कोई भी एक बड़ी बात हो तो उसके अंदर सबके सिग्नेचर लेकर के कारोबार करना है। वो 21 जनवरी से बाबा ने मैनेजमेंट के कारोबार में परिवर्तन किया और कुमार का दादी और दीदी मनमोहिनी को उसके ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी रखी एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसलिए बाबा ने दादियों का क्या टाइटल रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना कारोबार के लिए करने के लिए जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। दुनिया में कोई इधर भी इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का पोस्ट नहीं है और बाबा ने यहां पर यह पोस्ट बनाई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, माना कारोबार करने के लिए मुख्य संचालिका या मुख्य संचालक जो भी कहो इस प्रकार से। हाँ बाकी मालिक कौन, मालिक शिव बाबा, और कारोबार संभालने के लिए जैसे बैंकों में मैनेजर होता है ना इस प्रकार से संचालन करने के लिए निमित्त एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, निमित्त कारोबार करने के लिए हेड और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मुख्य सहयोग और सहयोग देने वाली दीदी मनमोहिनी इस प्रकार के था। फिर क्या हो गया, दीदी मनमोहिनी ने वो भी अव्यक्त हो गए तो फिर दादी प्रकाशमणि हेड रहे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और दादी जानकी जो है वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे। फिर क्या हुआ, चलता रहा कारोबार चलता रहा, फिर दादी का अव्यक्त होने का समय आ गया था तो दादी जानकी ने दादी प्रकाशमणि से बात किया कि हम तीन भाइयों को हम मैनेजमेंट कमेटी के अंदर इंडक्ट करते हैं लेते हैं, और दादी दीदी ने कहा ठीक है, दादी प्रकाशमणि ने बाबा से भी पूछा ठीक है, और फिर दादी प्रकाशमणि अव्यक्त हो गए। उसके बाद दादी जानकी ने, क्योंकि दादी जानकी का रोल नया हो गया था, दादी जानकी को बारे में बाबा ने कहा था कि बच्ची को देश और विदेश दोनों की सेवा को संभालना है, जब दोनों की सेवा संभालना है तो अपनी और फिर शरीर की आयु के हिसाब से भी देखना है, इस प्रकार से कारोबार था, तो इसलिए दादी जानकी ने क्या कहा कि ये जो तीन भाई जो है जो दादी प्रकाशमणि के समय से ही तीनों को मेंबर बनाया था मैनेजमेंट कमेटी का, उनको निमित्त बनाया और उसके द्वारा कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो काम करिए आप करिए, और ज्ञान का जो काम देने का जो है जो बाबा ने कहा हुआ है कि ज्ञान का कलश जो है आप माताएं बहनों के आप सिर पर रखा हुआ है, तो इस प्रकार से ज्ञान देने का कारोबार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम और स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन का काम दोनों के बीच में विभाजन कर दिया। तो इस प्रकार से बाबा नए नए प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर करके हम बच्चों को लायक बना रहे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, हमारे हिंदुस्तान में दो जगह पर प्रिंसेस ट्रेनिंग कॉलेज था, प्रिंस की राजकुमारों की ट्रेनिंग की कॉलेज थी, एक देहरादून में थी, उधर उत्तर हिंदुस्तान में देहरादून में उत्तरांचल का भी कैपिटल टाउन है शायद, और दूसरा राजकोट में थे, और दोनों ऐसी कॉलेज थी कि जहाँ प्रिंस और प्रिंसेस जो होती है उनको ट्रेनिंग मिले कि प्रिंस के रूप में और भविष्य में आकर के राजा बनने वाले ऐसे युवराज जो भी होंगे उनको ट्रेनिंग मिले कि राजा बनने के बाद राज्य अधिकारी बनने के बाद क्या ट्रेनिंग होगी। बाबा भी हम बच्चों को ये ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं। हम कौन है? हम होवनहार विश्व महाराजा विश्व महारानी है, उसके बाद महाराजा महारानी बनेंगे और फिर राजा और रानी बनेंगे। इस प्रकार की हमारी भी तीन प्रकार की स्टेजेस है, विश्व महाराजा फिर महाराजा और फिर राजा। तो ये भविष्य के ये तीनों प्रकार के राजा है जो भी है उनकी ट्रेनिंग बाबा यहाँ दे रहे और ट्रेनिंग देकर बाबा इसकी ट्रेनिंग देकर के हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि क्या है आप जानते हैं बाबा के लिमिटेशन। बाबा कहते हैं कि मैं सतयुग में नहीं आने वाला हूँ। बाकी सभी धर्म स्थापक जो भी है वो क्या करते हैं द्वापर युग के बाद स्थापक अपना धर्म की स्थापना करते हैं, स्थापना कर करके उसकी पालना भी यहाँ ही करते रहते हैं और इसके लिए भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में रह करके अपना कारोबार करते हैं, अपने धर्म का और धर्म को आगे बढ़ाने का कारोबार करते हैं। बाबा भी तीन धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, ये तीनों ही धर्म की स्थापना खुद करते हैं परंतु उसकी पालना करने के लिए बाबा न सतयुग में आते हैं न त्रेता युग में आते हैं। हम बच्चों को लायक बना करके ये तीनों धर्म के कारोबार के अंदर संगम युग का ब्राह्मण धर्म और सतयुग का देवता धर्म और त्रेता युग का क्षत्रिय धर्म, इस प्रकार से तीनों ही धर्मों का स्थापना का और उसके पालना करने का संस्कार उसकी अनुभूति उसका अनुभव हम बच्चों को करा रहे हैं। तो इसलिए ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है। कौन सी ट्रेनिंग कॉलेज है? विश्व महाराजा महाराजा और राजा हम भविष्य के होनहार जो भी है इन तीनों की ट्रेनिंग का रूप का कारोबार यहाँ हो रहा है। और इसलिए जो इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए आगे आएंगे जो एक कदम आगे आएंगे वो उनको बाबा मदद कर करके उसके लिए लायक बनाते हैं कि भविष्य का कारोबार, कल की भी मुरली में था कि राजा और अपने आप को करना पड़ेगा, उसके पास मंत्री आदि नहीं होगा। आप लोगों ने याद होगा राजाओं को अपना ही कारोबार करना होगा, तो अपना ही कारोबार करना होगा तो उसके लिए उसके पास सर्वांगी सब प्रकार के कारोबार करने का अनुभव होना ही चाहिए। तो ये बाबा हम बच्चों को ये विश्वविद्यालय के द्वारा सब प्रकार के कारोबार, इतने प्रकार के कारोबार यहाँ होते हैं। आप जब कारोबार के अंदर आगे आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि इतने अनेक प्रकार के कारोबार, अनेक प्रकार की बातें आमने सामने आती रहती है। और जो कारोबार करने की बातें आती रहती है तो हम सीखते रहते हैं और सीख करके क्या होता है हमारे पास अनुभव हो जाता है और अनुभव के आधार पर क्या होता है आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कारोबार के लिए। और युक्तियां भी बाबा सिखाते हैं कि कारोबार में सफलता प्राप्त करना हो तो क्या हो सकता है। मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि जब बाबा ने मुझे वर्ल्ड यूनिवर्स स्पिरिचुअल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कहा कि आपको ये कारोबार संभालना है, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं अनुभवी नहीं हूँ, मैं तो एक इनकम टैक्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में वकील हूँ, बाकी ट्रस्ट के रूप में कारोबार कैसे करना चाहिए, संस्था को कैसे चलाना चाहिए ये मुझे अनुभव नहीं है, और मैं अनुभव नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेरे से गलतियां भी हो सकती है, तो हमारे सामने उलझने भी आ सकती है तो क्या करें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उसके कोई बात नहीं है, अनुभव नहीं है तो सीखने का है, पर एक बात नक्की करना है कि तुमने बाबा ने बताया कि हर कल्प में तुम मैनेजिंग ट्रस्टी बना हुआ था, हर कल्प में तुम मैनेजिंग ट्रस्टी था, पिछले कल्पों में भी था, इस कल्प में भी होगा और अगले कल्पों में भी तुम होगा, तो इसलिए क्या करने का, कोई समस्या आए तो क्या करने का, योग में बैठ जाने का, योग में बैठ करके अपने कल्प पहले के संस्कार जो है कि कल्प पहले भी यही समस्या आई थी उसको कल्प मत समझना, कल का समझना, कल हमारे पास यही समस्या आई थी, ये प्रश्न आया था और उसका हमने उसका उत्तर क्या दिया, कैसे उस समस्या का हल किया, उसको याद करने का और अपने वो शक्ति भरने का, जो कल पहले किया था वही अभी करने का है। तो इस प्रकार से करेंगे तो बाबा की मदद मिल जाएंगी। और हमने अनुभव किया है, हाँ, यज्ञ के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज आदि खरीद की हुई है, बाबा ने जो जिम्मेदारी दिया है, और उस प्रकार से हम बाबा को याद करके करते हैं तो क्या होता है, हाँ, बाबा की मदद मिलती है। और इसके कारण दुनिया के अंदर तो प्रॉपर्टीज खरीदने में बहुत कुछ समस्याएं आती है, हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं आई है। कोई भी केस प्रॉपर्टीज हाईकोर्ट कोर्टों के अंदर जितना भी केसेस पेंडिंग है उसमें से 60% केसेस कोर्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज के बारे में है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज के बारे में एक भी केस नहीं है, आपस का भी कोई झगड़े का केस नहीं है। कारण यही है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर अपना ही कर्म जो है भूतकाल के कर्म को याद करके रिवाइज करके उस शक्ति को खींचने का प्रयत्न करें तो बाबा की मदद मिल सकती है। गुलजार दादी जब रशिया गए हुए थे तो रशिया में अब वहां के वहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो रशिया के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको पूछा गया, हाँ, कि एक अखबार वाले ने पूछा कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप क्या करते हो, हाउ डू यू फेस योर प्रॉब्लम्स। तो गुलजार दादी ने जब बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने भी गुलजार दादी का ये जवाब को धारण करने का प्रयत्न किया है, पुरुषार्थ किया है। गुलजार दादी ने कहा कि हम पहले तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। आप समझिए, पहली बात क्या है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही नहीं है, परंतु क्या समझो, समझो परीक्षा है। परीक्षा जो होशियार विद्यार्थी होता है वो परीक्षा को वेलकम करता है। गुलजार दादी ने कहा कि जो होशियार विद्यार्थी होता है वो परीक्षा को वेलकम करता है, और क्या होता है, वो समझता है कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो आगे और नंबर लूंगा और आगे की क्लास में जाऊंगा, और डिग्री भी मुझे उसके आधार पर मिलती है, कोई MBBS बनेगा, कोई MBA बनेगा, कोई BCOM बनेगा, जो भी है वो परीक्षा में पास होने से ही मिलती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है मुझे, परंतु मुझे पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही ये समस्या आई हुई है, ये परीक्षा आई हुई है। इसलिए क्या होता है, बात वही होती है परंतु उसको समस्या न समझते हुए आगे बढ़ने का स्टेपिंग स्टोन, आगे बढ़ने के लिए ये पंक्ति है कि जिसके द्वारा मैं आगे बढ़ सकूंगा। तो इस प्रकार से दादी गुलजार ने भी कहा, हम सब भी जान तो जानते हैं परंतु क्या होता है, भूल जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जब समस्या आती है ना तब उलझन में फंस जाते हैं। उलझन में फंसते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है बाबा के साथ कनेक्शन जो होता है उसको माया पहले क्या करती है, हमारा बुद्धि योग बाबा से तोड़वा देती है, और फिर वस्तुओं में, व्यक्तियों में, इन सब के अंदर हमारी बुद्धि चली जाती है, और उसके कारण क्या होता है, बाबा की मदद जो है, आध्यात्मिक शक्ति की मदद जो है वो हमारे से हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारी बुद्धि में वो नहीं होता है। और इसके कारण क्या होता है कि वस्तु और व्यक्ति के वैभव के बारे में उनके अंदर हमारी बुद्धि फंस जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि हम समय पर फेल हो जाते हैं। हम फेल हम ही होते हैं क्योंकि हमारे पुरुषार्थ के अंदर गलतियां होती है हमेशा ही। भर्तृहरि ने भी बहुत सुंदर कहा हुआ है कि स्वकर्म सूत्रेण ग्रसित वही लोक है, परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा, हम करोमि इति मिथ्याभिमान, अर्थात दूसरे ने मुझे दुख दिया ये मान्यता बहुत गलत है। हम हमारे कर्मों के आधार पर इस बातों से दुख लेते हैं, तो इसलिए हमारे हाथों में है कि बात वही होती है उसमें से सुख प्राप्त करना या दुख प्राप्त करना, बाबा भी वही सिखाते हैं, तो इसलिए बात तो वही है, उसमें से हमें सुख प्राप्त करना है या दुख प्राप्त करना, तो इसलिए बाबा ने जो हम तीन भाइयों को हम सामने खड़ा रख करके जो बात कही ये सबके लिए, ऐसा मत समझना कि तीन भाइयों के लिए, तीन बजे से आज सुबह एक भाई ने कहा कि बाबा घड़ी घड़ी आपको क्यों कहते हैं, हमने कहा हमको नहीं कहते हैं कि हमारे द्वारा सबको कहते हैं, और हमने उनको यही बताया कि हमारे गुजराती में कहावत है कि कहना होता है बहू को और नाम लिया जाता है बेटी को, तो इस प्रकार से बेटी को कहने की जरूरत नहीं, बहू को कहना है, सबको कहना है, सारे दैवीय परिवार को कहना है कि एकता में चलो, एक मत होकर के चलो, ये छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बातों में अपने को, हम छोटी बात को बड़ी कर करके क्या क्या फरियादे करते रहते हैं, इस प्रकार से इन सब बातों से भूलो और उसमें से टाइम बर्बाद करने का कारोबार छोड़ दीजिए, इस प्रकार की बाबा बात सिखाते हैं। तो ये मैंने आपको कहा ना, ये प्रिंस और प्रिंसेस बनने की ये है कॉलेज है। जो मेहनत करेंगे वो भविष्य के विश्व महाराजा यहाँ से ही बनेंगे, विश्व महाराजा भी यहाँ से बनेंगे, वहाँ राजा भी यहाँ से बनेंगे, और फिर क्या होगा, साहूकार भी यहाँ से बनेगा और प्रजा भी यहाँ से ही बनेगी। तीन स्टेज है, एक तो रॉयल राजा महाराजा, फिर राजा महाराजा क्या रॉयल फैमिली, तीसरा है साहूकार और चौथा है प्रजा। हम अपने ही हाथों से अपना भविष्य निर्माण करते हैं। क्या हम भविष्य में प्रजा बनेंगे, भविष्य में साहूकार बनेंगे, भविष्य में रॉयल फैमिली के मेंबर्स बनेंगे, या राजा महाराजा या विश्व महाराजा महारानी बनेंगे, ये सब हमारे ही हाथों में। हमको ये बाबा ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आपको इन चारों में से क्या बनना है। सब तो कहेंगे कि हमको चारों ही बनना है, या विश्व महाराजा बनना है, परंतु हमारे में वो लक्षण है, हमारा वो पुरुषार्थ है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम विश्व महाराजा बनने के लिए जो यथार्थ पुरुषार्थ करना चाहिए वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बाबा का लास्ट सवाल जो होता है कि अब नहीं तो कब करोगे, अब नहीं तो कब करोगे, और समय की सावधानी बाबा ने कल भी इनडायरेक्टली बताते रहे कि ड्रामा ड्रामा ड्रामा। तो इस प्रकार से समय की सावधानी, समय की सूचना बाबा देते ही रहते हैं, और इसलिए अब नहीं करोगे तो कब करोगे। तो इसलिए भी हम बाबा की मुरलियों को समझ करके सावधान होकर के कार्य करना है कि हमको अभी ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब नहीं करेंगे तो क्या होगा, और बाबा की मदद मिलती रहती है। बाबा ने भी स्लोगन दिया हुआ है कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। बच्चे हिम्मत ही नहीं रखते हैं। मैंने बाबा को कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, हिम्मत की क्या जरूरत है, आप सीधा ही हम बच्चों को काम कराओ, हमारे से खिंचाओ, ये काम करो, ऐसा करके हमको पूरी मदद करो। बाबा ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं भी सृष्टि ड्रामा के नियमों के अंदर बंधा हुआ हूँ। अगर मेरे को ही आप बच्चों को आगे बढ़ाना है तो मेरे को सारी दुनिया के बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, सारी दुनिया के बच्चों को आगे बढ़ा करके करना है। हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, यही कलयुग की दुनिया की आत्माएं जो है वो सब सत्योग में आ जाएंगी, इसके बदले में मैं क्या करता हूँ। मैंने खाली एक ही सिद्धांत रखा हुआ है, एक छोटा सा सिद्धांत कि हिम्मत है बच्चे, एक कदम आगे आप आओ तो बाबा 100 कदम आगे आ सकता है। मैंने कई बार बाबा ने कहा है, मुरलियों में रिपीट किया हुआ है, एक कदम आपका कहा है ना, आप सबने सुना है ना, बाबा की बात सुनी हुई है कि एक कदम आप बच्चों का, हाँ तो 100 कदम क्या, 1000 कदम बाप का। पर तो क्या होता है, हम एक कदम आगे ही नहीं बढ़ते। बाबा कहते हैं बाबा आपको ही सब कुछ करना है। भर्तृहरि ने कहा हुआ है, उद्यम नहीं सृजंती कार्याणि न मनोरथ ही, नहीं सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति गजाः। मतलब भर्तृहरि ने कहा है कि उद्यम होता है मेहनत करेंगे तो ही जो लक्ष्य रखा हुआ है वो सिद्ध होता है। खाली विचार करने से, मन में संकल्प रखने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। जैसे जो शेर होता है, शेर को शिकार करना पड़ेगा तब उसके पास शिकार आएगा और फिर वो शिकार को खा सकता है, नहीं तो हाथी जैसे समझे कि हाथी मेरे मुख में आ जावे, ऐसा हाथी उसके मुख में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम महारथी बनना चाहते हैं तो हमको भी ये कार्य करना ही होगा। और इसलिए ही हर एक अपने दिल से पूछे कि हमारा जो पुरुषार्थ जो है वो पुरुषार्थ हमको विश्व महाराजा बनाएगा, महाराजा बनाएगा, राजा बनाएगा, या तो क्या कहें साहूकार बनाएगा, या तो प्रजा, और प्रजा से नीचे में भी बहुत सी स्टेजेस है, वो स्टेजेस पे हम जाना नहीं चाहते क्योंकि हम बच्चे क्यों जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से ये कार्य हमको ही करना है, हमारे ही हाथों में, और अपना हाथ जगन्नाथ, जो बाबा कहते हैं मेहनत करो तो जगन्नाथ परमात्मा जो है ना वो भी आपको मदद कर सकता है। वो सब ज्ञान हमारे पास है, तो जब समस्या आती है तो बाबा को कहते हैं बाबा आप करो, हम हिम्मत का एक कदम आगे नहीं उठाते। एक कदम हिम्मत का आगे उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी की सब प्रकार की मदद मिल सकती है। बहुतों का अनुभव इस प्रकार से कि बाबा हिम्मत का एक कदम आगे उठाना चाहते हैं। हम लोग भी जब पहले पहले विदेश यात्रा पर गए 71 में, तो बाबा ने कहा था मैंने सब बातों का तैयारी करके निमित्त आप बच्चों को एक लाइट की स्विच होती है, घर में अंधेरा होता है, हाँ लाइट की स्विच ऑन करो और रोशनी हो जाती है, उतना लाइट की स्विच ऑन करने जितना भी पुरुषार्थ आपको नहीं करना पड़ेगा, सब आपके लिए तैयार है। तो हम तो सोचते थे ये कैसे किया होगा बाबा ने, परंतु हमने सारी टूर का अनुभव में आकर के यहाँ आकर के पांडव भवन में अपना अनुभव सुनाया था, उसमें यही कहा कि जो बाबा ने कहा कि सब चीजों की तैयारी करके रखी थी। आप नहीं तो सोचो $6 में सारी दुनिया की सेवा करके आना, वो के मासी का घर नहीं था, $6 कितना रुपया होता है आज, 50 रुपया भी गिनती करो 300 रुपया होता है, 300 रुपया के अंदर सारी दुनिया की सेवा करके आना। और बाबा ने कहा था कि आप देवता बन करके जाते हो, आप देने के लिए जाते हो, आप देवता हो लेवता नहीं हो, देवता हो लेवता नहीं हो, आप लेने के लिए नहीं जा रहे हो, देने के लिए जा रहे हो। तो इस प्रकार से ये देने के लिए जाने की भावना हमारे में जो बाबा ने निर्माण की, बाबा को याद करेंगे। अभी ओम शांति। आप सब सोचते होंगे आज क्या हो रहा है, हमारे पीछे में ये पर्दा लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है, और ये क्या हो रहा है। आज सुबह भी हरिलाल भाई ने और वंदना बहन ने आपको बताया था, ये एक हम प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं बाबा ने ये गॉडलीवुड स्टूडियो यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पर मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं तो पहले पहले वही आता है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार के साधन हम लोगों को मिलते रहते हैं। बाबा ने भी कहा हुआ है कि आज के विज्ञान के अंदर जो साधन निर्माण होते हैं वो किसके लिए काम में आने वाले हैं, विनाश की बात छोड़ दो, पर सुख के भी साधन बने हुए हैं। आज टेलीविजन है, आज एरोप्लेन है, ये सारी बातें जो भी है, अनेक प्रकार के MRI कराते हैं, क्या क्या कराते हैं साधन, मेडिकल दुनिया में भी, मेडिसिन की दुनिया में भी है, हर जगह के हर कारोबार में साधन नए नए बनते रहते हैं। बाबा कहते हैं तो आप बच्चों के लिए ही वो साधन है। आप जानते हैं कल बाबा की यहाँ मुरली चली, हम तो सारी दुनिया के अंदर बाबा ऑनलाइन जिनों के पास भी वो साधन थे उन्होंने सबने बाबा को कल यहाँ जो मुरली चली वो उसी टाइम पर वहां पर सुनी देखी सब कुछ अनुभव किया, और जैसे कि वो यहाँ ही थे ऐसा ही अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार से साधन बनते रहते हैं, उसमें नए नए साधन बन रहे हैं, और उसके अंदर ये एक वर्चुअल रियलिटी का एक नया साधन बना हुआ है जो सभी टीवी चैनल के अंदर जो न्यूज चैनल जो होती है उसके पास होता है, कि जो अखबार के रूप में या तो न्यूज के रूप में पढ़ने वाला जो होता है और पढ़ने का होता है उनके सामने भी वो टेली प्रॉम्प्टर रहता है, तो उसके अंदर वो न्यूज टाइप होता है और वो पढ़ता है। हम लोग समझते हैं कि उसको इतना याद रहता है, वो याद शक्ति के आधार पर कहता है, तो ये जब हम स्टूडियो के कारोबार में आगे आए अनुभव किया तो मालूम पड़ा टेली प्रॉम्प्टर जो होता है वो सामने होता है और उसको पढ़ करके और जो न्यूज पढ़ने वाला आता है वो पढ़ता है, और उसके आधार पर एक जगह पर बैठा हुआ है कई जगह के पीछे में चित्र आदि जो भी वो दिखा सकता है। जैसे कि न्यूज पढ़ने वाला जो एक ठिकाने बैठा हुआ है उसको हिमालय के पर्वतों के अंदर बैठा हुआ दिखाना है तो दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज की दुनिया के अंदर ये इस प्रकार के स्टूडियो के अंदर साधन बन चुके हैं, तो इस साधनों के आधार पर क्या क्या हो सकता है उसका एक एक्सपेरिमेंट के रूप में आपके सामने रखा। आप कहेंगे कि रमेश भाई आपने क्यों ये अपने लिए क्यों ये रखा एक्सपेरिमेंट का, हमने कहा कि हमारा ये पहला एक्सपेरिमेंट है पब्लिक के अंदर सबके सामने, और हमारा एक्सपेरिमेंट न चले तो दूसरा कोई यहाँ बैठा हुआ होगा उसको तो फील होगा कि रमेश भाई ने हमारा क्लास का कारोबार बिगाड़ दिया। इसके बदले में इसलिए क्या होता है, विज्ञान के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि वैज्ञानिक जो है ना पहला प्रयोग अपने ऊपर ही करता है और फिर औरों के ऊपर करता है, तो इस प्रकार से ये कारोबार का ये प्रयोग जो है हमने अपने ऊपर किया कि आप सब देख सकते हैं और आप सबका अनुभव जो भी होगा जो भी अभिप्राय होगा उसके आधार पर, और आपको ये मालूम रहे कि ऐसे स्टूडियो में और भी कई साधन है जो स्टूडियो की दुनिया के अंदर काम करने वाले हैं उन सबका अनुभव यही है कि ये बाबा ने जो स्टूडियो बनाया हुआ है वो वर्ल्ड क्लास स्टूडियो है, एकदम लेटेस्ट, ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट वाला आज तक भारत में तो कोई स्टूडियो नहीं है, हकीकत है, और ऐसा श्रेष्ठ स्टूडियो बनाया हुआ है। लोग जो आते हैं, सुभाष घाई जो आया हुआ था, कल्याण जी आनंद जी का आनंद जी आया हुआ था, और भी कई लोग आए हैं, बहुत हमारे पास आ चुके हैं, कईयों का हमारे पास अनुभव रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वो जो स्टूडियो का कारण जो निमित्त बनकर के जो आते हैं, देखते हैं, और उनको सबको लगता है कि बाबा के घर में इतने अच्छे कारोबार करने वाले, ऐसा इतना अच्छा स्टूडियो है, तो आप इसलिए आपके सामने रखते हैं कि इस स्टूडियो के द्वारा लोगों की सेवा करने का साधन बनाने का है, नई नई बातें का। जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ, एक मुलाकात, ऐसे जो वीआईपी भाई बहन आते हैं उनका वहां पर इंटरव्यू रिकॉर्ड करके अभी पीस ऑफ माइंड चैनल जो है उसके द्वारा लोगों को बताएंगे। ऐसे और भी कई प्रोग्राम बनते हैं हमारे, कई चैनल जो है गुजराती मराठी ऐसे प्रकार जो है, इन सब के अंदर जो रोज सुबह आता है हमारा कारोबार, इसके कारण दुनिया वाले भी देखते हैं, शाम को भी शिवानी बहन का आदि का जो प्रोग्राम आते हैं आप सब देखते हो, जानते हो, और उसके द्वारा सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। और अनुभव में भी यही आता है कि इसके द्वारा, टेलीविजन के द्वारा लोग आज के दिन चार से प्रकार के टेलीविजन के कार्यक्रम आते हैं, उसके कारण रोज के 1.5 करोड़ लोग बाबा को देखते हैं, बाबा का अनुभव प्राप्त करते हैं, बाबा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बाबा का जो ज्ञान जो है उसको ज्यादा से ज्यादा, रोज का 15 करोड़ लोग बाबा का ज्ञान सुन सके, इतना सुंदर ये साधन बाबा ने निर्माण करके दिया हुआ है। अब हमारे हाथों में है कि इस साधन को कैसे हम उपयोग में लावे, ऐसा सुंदर रूप में उसको उपयोग में लावे ताकि 15 करोड़ लोग जो है बाबा को देख करके, बाबा को, बाबा आया हुआ है, हाँ मेरा बाबा आ गया, जो हम गीत गाते हैं वो ही गीत का दुनिया वाले भी अनुभव करे, दुनिया वाले भी कहे कि हमारा पिता आ गया है। तो इस प्रकार से एक साधन जो है उसके द्वारा अनेक प्रकार के हो सकते हैं। हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जो हमने जो पहले ड्रामा हो गए, जो कॉन्फ्रेंसिस आदि जो हुई उसके अंदर जो ड्रामा हुए, शिवरात्रि हुई, अनेकता में एकता हुई, ऐसे बहुत से ड्रामा बने हुए थे, हर कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ड्रामा होता था, तो वो ड्रामा है, हमारे गीत है, उसके डांस है आदि आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है और भी कहीं बन सकते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम बनाने के लिए हम चाहते हैं कि आप सब आगे आइए, आप सब आगे आकर के हमारे कार्यक्रम को एक श्रेष्ठ बनाने में हमको मदद करें। इसके लिए इसका एक सिंबल आपके सामने रखा कि ये ऐसा सिंबल जो है दुनिया के सभी टीवी चैनल जो न्यूज चैनल होती है उनके पास ये होता है, और उसके द्वारा बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बताया सकते हैं। पहले यही रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में सेट बनाना पड़ता था, अब सेट बनाने के बदले में कंप्यूटर के अंदर ये सेट बन जाता है और इसको इसके द्वारा लाइव दिखा सकते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है इसका एक सिंबल जो है एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो है, इसलिए आप सबको आज सुबह मुरली क्लास के अंदर हरिलाल भाई ने और वंदना बहन ने कहा कि आप ज्यादा में ज्यादा संख्या में आकर के ये एक्सपेरिमेंट का अनुभव करके देखिए। तो ये अनुभव आपके सामने रखा हुआ है, तो आप सोचना है इसके ऊपर, और जब भी फुर्सत मिले हाँ तो इस प्रकार के कारोबार के लिए आप अपने विचार जो है, अपनी राय सलाह जो है हमारे पास स्टूडियो के अंदर भेज देंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे। और कईयों के आएंगे, जैसे होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, हाँ घर बैठा लक्षाधिपति बन जाइए, इस प्रकार से कईयों के ऐसे भी आएंगे वो हम स्वीकार करेंगे और उसके द्वारा जो सेवा होगी, हाँ तो आपके द्वारा मिला हुआ राय सलाह का प्रोग्राम जो भी है उसको हम आगे करेंगे तो काम करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, आपके द्वारा मिला हुआ प्रोग्राम के कारण आपका पुण्य का खाता उसमें जमा होता ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम आपको करना है और आपका सहयोग चाहिए। जो करें, जो हमारे बाबा ने कहा है, उठे सो अर्जुन, बाबा ऑफर तो सबको करता है, सबको ये ऑफर करता है, परंतु क्या होता है, 99% भाई बहन जो है ना, हमारे गुजराती में कहावत है कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना तो क्या करते हैं, लोग मुख धोने को चला जाते हैं, अपना मुख धोने के लिए जाता है और लक्ष्मी बिचारी तिलक किए बिना चली जाती है। मतलब अच्छी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है और स्वीकार नहीं करते हैं। 99% बहन भाई अच्छे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है परंतु उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए क्या होता है, जैसे थे वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं। बाकी बाबा के ज्ञान के आधार पर, बाबा के योग के आधार पर बहुत कुछ आगे हम बढ़ सकते हैं, हमारे विकर्म भस्मीभूत कर सकते हैं, अनेक प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है, जो स्वीकार करेगा, हाँ, जिनके तकदीर में होगा ड्रामा के अंदर, वो हम समझते हैं कि वही उसको स्वीकार करेगा। बाकी तो हमें हमेशा ही बाबा को उलेहना देता हूँ कि बाबा आपने एक गलती किया है। बाबा क्या, मैंने गलती किया? मैंने कहा हाँ बाबा आपने एक गलती किया है। तो क्या? तो मैंने कहा आपने हमको दो कान दिए हैं। इसलिए क्या होता है, जो ज्ञान यहाँ से जाता है वो सीधा यहाँ से ही निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं। हमारे जीवन में बाबा का ज्ञान जो है अंदर जाता ही नहीं, एक कान से जाता है और दूसरे कान से निकल जाता है, इस कान से जाता है वो इस कान से निकल जाता है, अंदर ही नहीं जाता है। आपको मालूम है ना बीरबल की कहानी कि तीन खिलौने थे और उसकी कीमत नक्की करने की थी। हाँ, तो क्या हो गया, एक कान से दूसरे कान में जाते थे, बीरबल ने कहा इसकी कीमत जीरो है, दूसरा था दूसरे खिलौने से ज्ञान कान में गया और मुख से वो निकल गया तो था उसको एक रुपया, और तीसरी खिलौने जो थी उसके ज्ञान मुख में डाला हाँ और पेट में गया कहा इसका 100 रुपया। तो इस प्रकार से धारण करना होता, तो पेट में गया माना धारण करने, जो धारण करता है वो 100% संपूर्ण बन सकता है। तो इस प्रकार से अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए तीन खिलौने में से हम क्या है, हमारी रंगीली बहन के द्वारा बाबा ने चित्र बनाया था ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, इस प्रकार की जो 4-5 बातें जो थी, इस प्रकार से हमारे ही जीवन में होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। दूसरी एक बात हमको कहनी थी आज कि हम लोगों ने अब तक बाबा को जो प्रत्यक्ष किया है ना, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष किया है, तो हम लोग भी ऐसे ही कारोबार करते थे बाबा के ज्ञान को कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कौन है, 84 लाख योनि की बात, ये सब बातें करते थे, और इसी के आधार पर हम चित्र बना करके, हम और जगदीश भाई ने चित्र बनाए, हमारे साथ में निर्मला बहन थी, रोजी बहन थी, शील दादी थी और उषा जी थे, और फिर उन्होंने चित्र बना करके विदेश में लेके गए। विदेश में लेके गए तो मालूम पड़ा कि विदेश के अंदर तो इन सब बातों की कीमत नहीं है। गीता का भगवान कौन है वो कृष्ण को ही मालूम नहीं है, गीता क्या है वही उनको मालूम नहीं है। हाँ, तो उनको हम प्रश्न पूछे कि गीता का भगवान कौन है, वो जरूरी नहीं था। 84 लाख योनि की बात भी उनको मालूम ही नहीं थी कि 84 लाख आत्मा योनियों में जाती है, वो भी मालूम नहीं था। परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, वो सब उनको जीवन में की जरूरत नहीं थी। तो जब हम वापस आए तो हम और जगदीश भाई बैठे और हमने नक्की किया कि हमको विदेश की सेवा करनी है तो क्या साधन अपनाना चाहिए। तो उसके अंदर नक्की हुआ कि वैल्यूज जो है, मूल्य जो है, मूल्यनिष्ठ समाज जो है, सत्योगी समाज के बदले में मूल्यनिष्ठ समाज, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हम बाबा बना रहे हैं, और इसलिए मूल्यों के आधार पर जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस प्रकार से बाबा मूल्यों का जीवन जीने की कला का कारोबार सिखा रहे हैं। ये दुनिया के सामने बाबा का ये डिवाइन कर्तव्य जो है, जो ओरिजिनल कर्तव्य जो है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये सारी बातें तो है, परंतु उसके साथ में ये अभी मूल्यों का जीवन की बातें बतानी चाहिए, जरूरी है। इस प्रकार से सबको बताने का कोशिश किया, और उसके कारण क्या हो गया कि मूल्यों का जो आधार जो है, वो जीवन जीने की कला का जो आधार जो है, दुनिया में भी और लोग भी मूल्यों की बात सिखाते हैं, और बाबा जो मूल्यों की बात सिखाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप लोगों ने अनुभव नहीं किया होगा कि दुनिया वाले मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। आपको मालूम है रविशंकर जी जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के बारे में सिखाते हैं। मैंने उनका भी पढ़ा हुआ है और बाबा का भी पढ़ा हुआ है। कंपेरेटिव नॉलेज के आधार में हम अनुभव किया कि उनके ज्ञान के अंदर जो जीवन जीने की कला है वो लौकिक दुनिया के हिसाब से होती है, और हमारे यहाँ बाबा ने जो आज भी कहा संतुष्ट मणिया, संतुष्ट मणिया बनने की, संतुष्ट जीवन बनने की, करने की, जीवन जीने की कला बाबा हमको सिखाता है। और इसलिए बाबा ये जो जीवन जीने की कलाएं जो सिखा रहे हैं उसको दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है। और इसके कारण क्या होता है, अब तक हम परमात्मा के बारे में बताते हैं तो परमात्मा के बारे में कंट्रोवर्सी के रूप में अन्य धर्म वाले, अन्य पंथ वाले हमारे पास नहीं आते, परंतु जीवन जीने की कला और श्रेष्ठ, आपने पिछले रविवार की मुरली में, अव्यक्त मुरली में साथी और साक्षी की बात बताई बाबा ने, और उसमें बाबा ने बताया कि सर्व संबंध एक बाप से रखने का। ये सुना तो सबने, सुना सबने कि साथी और साक्षी रूप का उसका फायदा क्या है, पहले साथी या पहले साक्षी, इस प्रकार से साक्षी बनेंगे तो ही साथी बन सकेंगे। इस प्रकार से बाबा ने एक कंट्रोवर्सी का जवाब भी दे दिया। अब जानते हैं दुनिया में अनेक प्रकार की कंट्रोवर्सी होती है। एक कंट्रोवर्सी है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, मालूम होगा सबको ये कंट्रोवर्सी, अंडा पहले या मुर्गी पहले। हाँ, अंडा नहीं होगा तो मुर्गी कहाँ होगा, मुर्गी नहीं होंगे अंडा कहाँ से आएंगे, तो कौन पहले? इस प्रकार से साथी पहले या साक्षी पहले। तो बाबा ने इस कंट्रोवर्सी का जवाब दे दिया कि पहले साथी बनो, उसके बाद साक्षी, पिछले मुरली में आप पढ़ लेना। तो इस प्रकार से बाबा साथी साक्षी और सर्व संबंध एक के साथ में है। और इसलिए अब ज्ञान का ये दूसरा पहलू जो है वो दुनिया के सामने रखना है कि सर्व संबंध परमात्मा के साथ रखने से क्या प्राप्ति होती है। सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ रखने से क्या प्राप्ति होती है। गीता में भी श्लोक है, हाँ, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। वो है, वो सब संबंधों का अनुभव पांडव गीता के अंदर अर्जुन ने गाया हुआ है। ये हम सब अर्जुन है और हम सब भी इस प्रकार से सब प्रकार का परमात्मा को पिता समझे, परमात्मा को माता समझे, परमात्मा को बंधु समझे, सखा समझे, साक्षी, सब प्रकार का द्रविणं, परमात्मा के द्वारा भी पैसा मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के द्वारा विद्या प्राप्ति हो सकती है। सब प्रकार के अनुभूति आपको करना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बाबा सब प्रकार के अनुभव आपको कराने के लिए तैयार है। सिर्फ बात यही है, आपको एक कदम, बाबा का एक ही कंडीशन है, आप एक कदम आगे बढ़ो तो बाकी सभी कंडीशन, सब प्रकार का सहयोग, सब प्रकार का कदम बाबा आपके सामने आने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये अनुभव करना जैसा है। मैं भी अपना अनुभव, मैंने कई बार बताया हुआ है कि मैं ज्ञानामृत में आर्टिकल्स लिखता हूँ, कई लोग पढ़ते भी हैं, समाचार भी देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि परमात्मा को, परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा शक्ति का सागर है, परमात्मा स्नेह का सागर है। इस प्रकार के सर्वशक्तिवान परमात्मा का एक पहलू है परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो उस दिन क्या करना होता है, जिस दिन मुझे आर्टिकल लिखना होता है, मैं क्या करता हूँ, बाबा को ज्ञान सागर के रूप में याद करता हूँ। बाबा तो सब प्रकार के है ना, सब प्रकार का सागर है, ओशन, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, हैप्पीनेस, ये सब प्रकार का सागर है। उसमें से एक गुण कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसके क्या होता है, ज्ञान के सागर से ज्ञान की शक्ति जो है उसको खींचने का, जैसे शिव जी की जटा में, शंकर की जटा में गंगा आई, उस प्रकार का है ना। तो इस प्रकार से हम भी अपने बुद्धि रूपी जटाओं में, बुद्धि रूपी मस्तक के अंदर, बुद्धि रूपी आत्मा की शक्ति के अंदर हम बाबा के ज्ञान की शक्ति को खींचने का प्रयत्न करें और वो ज्ञान संपन्न स्वरूप बन जाए, हम मास्टर ज्ञान स्वरूप बन करके रखे। और फिर जब हम आर्टिकल लिखना बैठते हैं, आधा एक घंटे सवा घंटे में आर्टिकल पूरा हो जाता है। और दुनिया वालों का आर्टिकल और हमारा ज्ञान का अनुभव का आर्टिकल जो है, उसमें कईयों को महसूस होता है कि कहीं नवीनता होती है, कहीं विचित्रता होती है, कोई अनुभव की बातें होती है। तो ये सब बाबा को याद करते हैं तो बाबा उस प्रकार से वो मददगार बनता है। तो परमात्मा के साथ ज्ञान के सागर के रूप में याद करो, तो ज्ञान का शक्ति का बल मिल सकता है। जिनों को भी भाषण करना होता है, जिस दिन भाषण करना होता है, उस दिन सुबह परमात्मा को ज्ञान का सागर के रूप में याद करें और उसके बाद उस दिन भाषण करें। देखना जिन्होंने भाषण करने का जिम्मेदारी ली, उठाई हुई है या मिली हुई है, वो इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो अभी ये प्रयोग कर रहे हैं कि बाबा के साथ सब प्रकार के शक्तियां जो है, बाबा का गुण, सब प्रकार के गुण बाबा के अंदर है और उसको गुणों को धारण करना है। सब प्रकार के शक्तियां हैं, सब प्रकार के संबंध हैं, सब प्रकार की प्राप्तियां हैं, एक से प्राप्त करने का प्रयत्न और कैसे हो सकता है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर करके, किताबें बना करके। जब अभी तक हमने परमात्मा के बारे में, परमात्मा का परिचय के बारे में बताया, अब परमात्मा की ये शक्ति, गुण, कर्म और अनुभव, उनके कर्तव्य, इनों के बारे में आप बताइए तो क्या हो जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि दस अवतार के जो कर्तव्य जो है वो अभी संगम युग के एक ही कर्तव्य के अंदर वो दशा अवतार की बातें आती है। दुनिया के जितने भी धर्म बने हुए हैं वो सभी धर्म जो है बाबा के ज्ञान के आधार पर किसी ने कोई बात उठाई, किसी ने कोई बात उठा करके दुनिया के सभी धर्म बने हुए हैं। तो इसी हिसाब से बाबा के जो भी बातें जो है उसको हम उठा करके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें कि आपको पैसा चाहिए ना, तो आप तमें विद्या द्रविणं त्वमेव, द्रव्य कह देखिए, द्रव्य माना पैसे के लिए भी उनकी आराधना करिए, लक्ष्मी की आराधना उसमें ही आती है ना। तो इस प्रकार से आप प्राप्त जो भी प्राप्ति करना चाहे, हाँ बाबा एक कल्प वृक्ष है, इच्छा हाँ जो भी सबकी है उसको पूर्ण करने वाले बाबा बैठे हुए। तो इस प्रकार से ये कर्तव्य के बाबा की बातें जो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है, बाबा के गुणों को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करो, बाबा के शक्तियों को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करो। कोई भी समस्या आए बाबा को याद करो और शक्ति जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। बाबा 101% मैं आपको बाबा की तरफ से गारंटी देता हूँ कि बाबा 101% आपको आपका तरीका श्रेष्ठ होगा, तो बाबा आपको श्रेष्ठ तरीका अगर श्रेष्ठ सत्व प्रधान पुरुषार्थ होगा तो बाबा आपको मदद करेगा करेगा करेगा, ये मेरा जीवन का अनुभव है। तो आप भी इस प्रकार से करिए, हाँ आप मेरी अनुभव को सुनकर के ताली बजाते हो, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि लोग आपके अनुभव सुनकर के ताली बजाए, ये होना चाहिए। मैं पहले प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में सेवा देता था, तो जब बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ा तो मैं अग्नि संस्कार के समय पर फोटो निकाल रहा था, तो करुणा भाई मेरे बाजू में आए, रमेश भाई अब ये फोटो निकालना बंद करो। मैंने कहा मैं क्या करूं, कहा ऐसा काम करो कि आप औरों के फोटो निकालते हैं उसके बदले लोग आपके फोटो निकाले, ऐसा पुरुषार्थ करो। मैंने कहा करुणा भाई ठीक है, आज से मैंने कैमरा छोड़ दिया और मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा लोग मेरा फोटोग्राफ निकालने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से आप भी ऐसा पुरुषार्थ करो कि लोग आपके गुण गाए, आपके गायन हो जाए, आपका पूजन हो जाए। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है हाँ कि आपका ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होगा जिसके आधार पर आपका गायन होगा, आपका ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होगा जिसके आधार पर आपका पूजन होगा, और ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होगा जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन होगा। ये तीनों प्रकार की बातें अलग अलग है। आप सोचिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो क्या उसके आधार पर आप गायन योग्य या उसके आधार पर पूजन योग्य या गायन और पूजन योग्य आप बन रहे हो, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, अपने को पूछिए, औरों को मत देखिए, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा है जिस पुरुषार्थ के आधार पर लोग हमारा गायन करें, लोग हमारा पूजन करें या लोग हमारा गायन और पूजन करें, इस प्रकार का हम बने। और क्या हो जाएगा, हम पूजनीय बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम पूजनीय बनेंगे तो द्वापर युग से हमारे ही भक्त जो है हमारी पूजा करेंगे। अभी हमारी दो प्रकार की प्रजा बन रही है, एक तो हमारी सत्युग त्रेता में आने वाली प्रजा वो बन रही है और दूसरी हमारे भक्तजन बन रहे हैं जो हमारा गायन कर सकते हैं, जो हमारा पूजन कर सकते हैं या गायन और पूजन कर सकते हैं। तो ये द्वापर युग से जो हमारे भक्त जो है जो हमको अभी भी याद कर रहे हैं, हमारे जड़ चित्रों के सामने जाकर के हम बातें करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे जड़ चित्रों के द्वारा भी उनको जो प्राप्ति होती है तो हमारे जीवन के द्वारा क्यों नहीं उनको श्रेष्ठ प्राप्ति हो सकती है। हो सकती है प्राप्ति, पुरुषार्थ करने की जरूरत है, थोड़ा ही पुरुषार्थ, जैसे कहा ना मैंने, बाबा ने कहा हुआ एक कदम आगे बढ़ो तो बाकी सब कदम मैं आपको आगे आ सकता हूँ। तो इस प्रकार से बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है, जो पुरुषार्थ सिखाते हैं, जो योग करते हैं, जो धारणाएं करते हैं, इनके आधार पर ऐसी सेवा करें कि लोग हमारे गायन भी करें, पूजन भी करें। और इस प्रकार से परमात्मा को इन 5 बातों से, पहले जो हम कहते थे परमात्मा बिंदी रूप है, परम धाम में रहते हैं, शांति सागर है, इस प्रकार के 5 बातों बताते थे, अब ये 5 बातें बतानी चाहिए दुनिया को कि परमात्मा का गुण क्या है, परमात्मा में शक्तियां क्या है, परमात्मा के कर्तव्य क्या है, परमात्मा ऐसे प्रकार की 5 बातें जो है उसको जीवन में धारण करने से परमात्मा के हर कदम हर पहलू के अंदर क्या क्या बल मिल सकता है, क्या संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार से सर्व संबंधों का खान जो है, सर्व संबंधों का रस जो है, एक परमात्मा हमको करा सकता है। इस प्रकार का पुरुषार्थ कीजिए तो क्या हो जाएगा, जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। परंतु फिर भी आखिर में फिर भी बाबा यही कहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं। तो इसलिए ये ड्रामा अनुसार आप सबको पुरुषार्थ करना है, करे तो बहुत ही अच्छा है, और जो करेगा हाँ सो पाएगा, इस प्रकार का वही बाबा कहते हैं। तो इसलिए हाँ आज के बाबा की कल की मुरली जो है उसके अंदर मुख्य सार तो यही था, हाँ कि जो करेगा और ड्रामा अनुसार जो भी होगा और ड्रामा को साक्षी होकर के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर प्रकार की बातों का हम सामना कर सकेंगे। दादी जानकी को भी बाबा ने कहा, हंसा ने कहा कि दादी गिर गई, तो बाबा ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो होना ही था, और बाबा ने कहा कि अभी तो और ही सुंदर बन गई हो। तो इस प्रकार से मैंने हंसी हंसी में बाजू में कोई बैठा था उसको कहा, हाँ जानकी दादी को बारे में बाबा ने जो कहा सुंदर हो गई है, तो हमने कहा कि सब हम दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें कि 95 वर्ष की सुंदरी को देखना हो तो जानकी दादी को देखो। दुनिया में तो 95 वर्ष की जो बूढ़ी माता हो गए दांत नहीं होते है, कुछ भी नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे उनका व्यवहार होता है, ऐसा उसका जीवन होता है। और दादी जानकी के बारे में बाबा ने भी कहा कि और ही सुंदर हो गई हो। तो इस प्रकार से हम भी सब सुंदर बन सकते हैं, तो इसलिए सुंदर बनने वाले और बनाने वाले बाप को, हम बनने वाले और बनाने वाला बाप है, उस बाप को याद करें, हाँ तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए भी बाबा कहेंगे और ही तुम सुंदर बन गए हो, चाहे हम कितने भी साल के हो, हाँ परंतु हमारी जीवन व्यवहार की कला के आधार पर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और ऐसा सुंदर बनाने वाले बाप को, बाप का ये जो पांच बातों का जो है संबंध में गुण शक्ति कर्तव्य और मिलने का समय आदि आदि जो भी पांच बातें जो है उसके आधार पर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ करो, और उसके आधार पर बाबा का बाबा को जो प्रत्यक्ष करना है इन पांच बातों के आधार पर प्रयत्न करें तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का बहुत ही सहज हो सकता है। आप सब सोचना, मैं तभी कह रहा हूं कि सब सहज हो सकता है, ये आपका भी अनुभव हो सकता है कि बहुत सहज हो सकता है। हाँ सिर्फ क्या है कठिन, जैसे बाबा कहते हैं, दादी ने कहा छोटी बात को बड़ी करना, इस प्रकार से कठिन बात को सहज करना, और मैंने उसमें ऐड किया है कठिन बात को सहज करना या सहज कर बात को कठिन करना, ये हमारे हाथों में है। 95% बहन भाई क्या करते, सहज बात को भी कठिन कर देते हैं, और जो 5% बहन भाई ऐसे है जो कठिन बात को भी सहज कर सके। अभी आप जानो आपको क्या करना है, कठिन बात को सहज करना है या सहज बात को कठिन, सहज बात को कठिन करना है या कठिन बात को सहज करना, आप सब क्या चाहते हो, कठिन बात को सहज करना चाहते हो या सहज बात को कठिन करना चाहते हो? जो सहज बात को कठिन करना चाहे वो हाथ खड़ा करे, कोई नहीं है, तो जो आप चाहते नहीं हो तो ऐसा करते क्यों? जैसे जानकी दादी का छोटी बात को बड़ी करना, वो उसमें सब एक्सपर्ट है, सबका पहला नंबर है, परंतु बड़ी बात को छोटी करना वो उसमें नंबर लेना है। तो इस प्रकार से नंबर लेना है, प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। हाँ तो अभी समय भी हो चुका है, हम 2-3 मिनट बाबा को याद में बैठेंगे और फिर आज का क्लास जो है समाप्त करें। आप सबने मुझे शांति से सुना, मुझे आपके सामने अपना विचारों प्रकट करने का और ये एक्सपेरिमेंट करने का जो आपने सहयोग दिया, इसके लिए आपके आप सबका हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो की टीम की तरफ से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति।
राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा